ओम शांति। जीवन यदि समस्याओं से मुक्त हो जाता है तो जीने का सुख मिलता है, बाबा से प्यार बढ़ता है और ये संगम युग की रूहानी यात्रा पूरी तरह सफल हो जाती है। जीवन अगर समस्याओं में ही बीतने लगे, एक गई दूसरी आई, कईयों के साथ ये हो रहा है, तो बहुत मुश्किलात होती है। आज हम ये चर्चा करेंगे, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा पहले, आज तक जो देखा जाता है बिल्कुल ये लोगों के सच्चे अनुभव दूसरों के, जो व्यक्ति बहुत भावना से बाबा पर विश्वास करते हुए प्रयोग करते हैं उनको जल्दी सफलता मिलती है, और जो ये सोचते हैं कि भाई मैंने कहा है चलो करके देख लेते हैं, कुछ होता हो तो अच्छा है, उनको कम मिलती है। अपने में विश्वास, अपनी शक्तियों में विश्वास, जो बाबा ने आज भी पहला ही टाइटल दिया हम सबको, मास्टर सर शक्तिवान का, बाबा में विश्वास, अपनी सफलता में विश्वास और बहुत भावना, इन सब से अनेक बातें ठीक हो जाती हैं। लेकिन साथ में एक चीज और काम करती है, मनुष्य के पुण्य कर्म। जिसके पास पुण्यों का खाता बहुत है वो सहज मुक्त हो जाते हैं, जिसके पास दूसरा खाता है उन्हें कठिनाई होती है, सफलता नहीं मिलती या देर भी लग जाती है। तो हमें अपने पुण्यों का खाता भी बढ़ाना है, और जो स्वमान है मास्टर सर्व शक्तिवान, ये कोई रटने की चीज नहीं है। हम भी बहुत समस्याओं में कराते हैं कि 108 बार लिखो उठते ही, लेकिन इसको पहले अपना लेना है। अपनाने का अर्थ है मैं मास्टर सर शक्तिवान हूं, इसका अर्थ है मैं बहुत शक्तिशाली हूं, और जो शक्तिशाली है उसे डर नहीं होगा, वो छोटे छोटे चुनौतियों से घबराएंगे नहीं, वो छोटी छोटी बातों में परेशान भी नहीं होंगे, तो मैं बहुत शक्तिशाली हूं, माया पर भी उनकी विजय होगी। तो इसको अपने स्वरूप में लाते चलें, स्वीकार करते चलें, मैं बहुत शक्तिशाली हूं। अगर ये स्वीकार करने के साथ हम ये संकल्प करते हैं मैं मास्टर सर्व शक्तिवान हूं, तो शक्तियां जागृत हो जाती हैं और हमसे चारों ओर शक्तियों की किरणें फैलने लगती हैं, जो बहुत बड़ा काम करती हैं। हमारी शक्तियों की तरंगे इस संपूर्ण, जिसको लोग ब्रह्मांड कहते हैं ना, बाबा ने तो ब्रह्मांड परम धाम को कहा, पर ये आकाश तत्व, ये सारा लंबा चौड़ा एरिया, इसको ब्रह्मांड कहते हैं। ये सारा ब्रह्मांड हमारे वाइब्रेशंस को बहुत जल्दी ग्रहण करता है और निर्माण करके वही चीजें वापिस भेजता है। सबको ये ख्याल रहे, जो संकल्प हम पावरफुल ढंग से विश्वास से करते हैं उसकी तरंगे दूर दूर तक फैलती हैं, और प्रकृति उन्हीं चीजों का निर्माण करके हमें वापिस कर देती है। इसलिए एक तो विघ्न समस्याओं से घबराना नहीं है, क्योंकि हमारा जन्म जन्म का कर्मों का हिसाब किताब भी तो सामने है ना, अभी वो चुक तो भी हो रहा है, कोई लेने आ रहा है कोई देने आ रहा है, किसी का हिसाब किताब ज्यादा कठिन होता है, थोड़ी सी कठिनाइयां आती हैं। इसलिए एक संकल्प से अपने चित्त को शांत करेंगे सभी, वो संकल्प है जो कुछ मेरे साथ हो रहा है उसके जिम्मेदार मेरे कर्म ही हैं। मन को शांत करेंगे, अब मुझे उस कर्मों के निगेटिव खाते को योग बल से समाप्त करना है, जलाना है। तो चित्त शांत होगा तो योग बहुत अच्छा होगा, नहीं तो मन में प्रश्न उठेंगे, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, दुनिया में बहुत लोग हैं पाप कर रहे हैं, उनके साथ अच्छा अच्छा हो रहा है, मैंने तो कोई पाप किया नहीं, बाबा मुझे ये सजा क्यों दे रहे हो, बाबा तो किसी को सजा देता नहीं है। पर ये संकल्प उठते हैं तो कोई भी चीज जीवन में हो जाए, ध्यान रखना बाबा में विश्वास छोड़ना नहीं है। बाबा हर पल हमारी मदद करेगा ही, लेकिन हमारे कर्म भी तो सामने आते हैं ना। ऊपर से धूप पड़ रही हो, हमें ठंड लग रही हो, लेकिन हमने यहां कुछ कवर कर लिया हो, धूप आए ही नहीं, कमरे में चले गए हो, धूप आए नहीं, हमें धूप की जरूरत हो तो धूप क्या करेगी, धूप देने वाला सूरज क्या करेगा। हमारे कर्म भी हमारे साथ साथ चलते हैं, इसलिए अपने योग बल को बढ़ाना और अपने जीवन को कुछ नियमों में बांधना मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है। अपने जीवन के कुछ नियम बनाए आप, उदाहरण के लिए बारिश का सीजन चल रहा है, आपके वहां ज्यादा हो रही हो, आपको संकल्प आएगा आई सेंटर तो नहीं जा सकेंगे, बारिश बहुत तेज है, अभी संकल्प तो उचित है, बारिश बहुत हो रही है, आप बहन है कैसे सेंटर जाएंगे। लेकिन अगर आपको बहुत पावरफुल नियम होगा, मुझे रोज सेंटर पे जाना ही है मुरली सुनने के लिए, तो प्रकृति आपको मदद कर देगी, बारिश कुछ समय के लिए बंद हो जाएगी, अच्छा हो जाएगा सब कुछ, ये सब सुंदर अनुभव होते रहेंगे। तो कुछ बातों के आधार से हम आपके प्रश्नों के उत्तर देंगे संक्षेप में, डायरी पेन सभी रखेंगे, मैं बहुत तेज नहीं बोलूंगा ताकि आप लिख भी सकें, फास्ट नहीं बोलूंगा। चलो भाई अनिल पहला।
ओम शांति भाई जी, पहला प्रश्न है कि हमारे बड़े दूसरों की बातों में आकर हमें झूठा समझते हैं, फिर वैसे ही ट्रीट करते हैं, हर बात में समझते हैं झूठ बोल रहे हैं, तो हम इसमें क्या करें।
प्रश्न बहुत प्रैक्टिकल है और उचित है, मैं कहूंगा सुंदर भी है। आप कहेंगे इतना खराब प्रश्न और सुंदर। एक इम्पोर्टेंट धारणा अपने में समा लें, अगर हम सत्य हैं तो अपनी सत्यता में विश्वास बहुत बड़ी चीज है। लोगों को अपनी सत्यता में विश्वास नहीं रहता, आपने कोई गलती नहीं की और आपकी शिकायत हो गई इसने गलती की है। एक चीज होती है कि मनुष्य सिद्ध करता है बड़ों के आगे, नहीं हमने नहीं की, बता तो जरूर देंगे कि हमने नहीं की, लेकिन सिद्ध नहीं करेंगे। सत्यता में शक्ति है स्वतः ही सिद्ध होने की, ये भगवान के महावाक्य हैं। सत्यता को छुपाया जा सकता है, हराया जा सकता है, हराते भी हैं लोग सत्यता को, कोर्ट में तो यही चलता है ना, झूठे विजयी सत्य की हार, लेकिन सत्य की शक्ति को कोई नष्ट नहीं कर सकता। सत्य को छुपा सकते हैं, हरा सकते हैं, दो चार पावरफुल लोग सत्य को दबा सकते हैं, लेकिन उसकी शक्ति को नष्ट नहीं किया जा सकता। इसलिए जब ऐसा हो रहा हो तो ज्यादा डिबेट में न जाओ, सिद्ध करने में न जाएं कि मैं सत्य हूं, मेरी बात भी सुनी जाए। कभी कभी सुनने वाला इतना योग्य नहीं होता कि आपकी बात सुने, शांत कर दो। इंपॉर्टेंट बात है, अपनी स्थिति को बिगड़ने नहीं देना है। बहुत ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट धारणा है, लेकिन ताकत भी चाहिए। आप सोचेंगे ये हमारे बड़े हमारे बारे में ऐसा ही सोचते हैं, हमसे ऐसा ही डील कर रहे हैं। थोड़ा सा सहन करें और थोड़ा चुप होके अपनी सत्यता में स्थिर हो जाएं, तो सत्य स्थिति के आगे झूठ स्वतः ही सामने आ जाएगा बहुत जल्दी। परेशान ना हो। पसंद है? ये सब बातें हमारे सामने भी आती हैं। हमारा बड़ा संगठन है, बहुतों के सामने आती हैं। यज्ञ में शांतिवन में तो हजार लोग समर्पित हैं, बहुतों के सामने आती हैं ये बात। लेकिन जो अपनी स्थिति नहीं बिगाड़ते, अंततः उनकी विजय होती है।
यदि कोई निकट का संबंधी शरीर छोड़ देता है तो उसे बहुत दुख भी होता है, जल्दी बुलाया भी नहीं जाता है और हमारी अशरीरी स्थिति भी नहीं बन पाती, तो क्या करें हम?
फिर से पढ़ना पड़ेगा, आवाज आपकी गूंज रही
है। यदि कोई निकट का संबंधी शरीर छोड़ देता है,
हाँ,
उसमें बहुत दुख भी होता है, उसको जल्दी बुला भी नहीं सकते हैं और हम अशरीरी बनना चाहते हैं तो अशरीरी भी नहीं बन पाते हैं, तो क्या करें हम?
रोज याद किया करें कि 5000 साल का खेल पूरा हो रहा है, अब सबको घर चलना है, कोई आगे कोई पीछे, सबको जाना है। और बाबा के जो थोड़े भी मजबूत बच्चे हैं वो मृत्यु के इस खेल को स्वीकार कर लेते हैं, परेशान नहीं होते, जानते हैं और जानना चाहिए। जब जिस आत्मा का हिसाब किताब उस जगह पूरा हो गया उसको जाना ही है। कर्मों का बंधन समाप्त हुआ, जाना ही है। भुलाना तो पड़ेगा क्योंकि रोने से वो वापिस नहीं आएंगे। अगर आपको उनसे प्यार है, था, तो उन्हें आधा घंटा रोज योगदान दो। इससे आपका चित्त भी शांत होगा और उनको भी शांति का आभास होगा। उनके दुख में, उनके जाने के दुख में आप बहुत दुखी होंगे, आपको क्लियर पता हो, आपकी दुख की लहरें उस आत्मा को भी दुखी करेंगी। इसलिए प्यार है तो उसे सुख देना है, उसे शांति देनी है, योगदान देंगे आधा घंटा रोज, कम से कम 3 मास, तो भूल भी जाएंगे, स्वीकार भी कर लेंगे। और कोई जो ये परेशानी हो रही है शरीरी बनने की, ये भी ठीक हो जाएगी। 5 स्वरूपों के अभ्यास पर ज्यादा ध्यान दें अपने जीवन में, अपनी साधनाओं में 5 स्वरूपों का अभ्यास ज्यादा बढ़ाना है सबको, कई चीजें ठीक रहेंगी।
भाई जी, प्रश्न इसी से जुड़ा हुआ कि ड्रामा कल्याणकारी है लेकिन छोटी छोटी घटनाओं में कल्याण कैसे माने? जैसे उदाहरण है, कोई सामान गुम हो जाता है, कुछ नुकसान हो जाता है, तो उसको कल्याणकारी कैसे समझे?
है तो काम कठिन, चोर चोरी कर गए कल्याणकारी है, उनका माल था ले गए, ये तो नहीं सोच सकते। लेकिन कहा किसने ये कि ड्रामा कल्याणकारी है? किसने कहा? मैंने तो नहीं कहा ना, ये उसने कहा है जो इस विश्व ड्रामा को जानता है कि जो कुछ भी होता है, नुकसान होते हैं, बड़े बड़े होते हैं, और मनुष्य को ये सोचना बहुत मुश्किल पड़ता है कि ये कल्याणकारी है, लेकिन जो कुछ भी होता है वो मनुष्य के कर्मों का ही फल होता है। इसलिए एक विकर्म कट गया, ये कल्याण हुआ। कुछ चीज ऐसी होती हैं, हार से भी हम अच्छी बात सीख लें, ऐसा सीख लें कि जीवन में फिर हार न हो, तो हमारा बहुत बड़ा कल्याण हो गया। हम ठोकर खा के गिर गए, हमें चोट लग गई, बड़ा कल्याण हो गया। लेकिन हम ऐसा सीख लें, सावधान हो जाएं कि दोबारा ऐसा न हो, कल्याण हो गया। तो भगवान ने कहा है, और इसमें एक शब्द और जोड़ा है, हर अकल्याण के पर्दे के पीछे कल्याण छुपा होता है। पर्दा हटेगा, तुम्हें कल्याण स्पष्ट दिखाई देगा, इसलिए थोड़ा सा धीरज धरो। ये सुंदर महावाक्य बाबा का, जब ये चला था तब से मुझे याद है, हमने खूब प्रैक्टिस की। कल्याणकारी तो है क्योंकि भगवान ने कहा है, और ये भी कहा, ये महाभारत युद्ध भी बड़ा कल्याणकारी है। अब देखो सबसे बड़ी चीज, इधर हाहाकार होगा, उधर भगवान कह रहा है ये सब बहुत कल्याणकारी है, तो राज तो है ना कुछ, क्योंकि सफाई के बाद स्वर्णिम युग आ जाएगा इस धरा पर, जो लंबा समय चलेगा, संसार का संपूर्ण रूप से कल्याण हो जाएगा। न यहाँ कोई दुखी रहेगा, न अशांत रहेगा, न कोई कमी होगी, न किसी को नौकरी धंधों के लिए भागदौड़ करनी पड़ेगी, न पैसा कमाने की टेंशन होगी, स्वर्णिम युग आ जाएगा। अथाह धन संपदा, कल कोई लाया कुछ सोना, मुझे दिखाया, भाई ये किचन के लिए लाए हैं, देखा मैंने कहा कितना है, उसने बताया इतना है, कीमत बहुत उसकी। तो मैं सोचने लगा, देखो इतने से सोने की कीमत इतनी ज्यादा, और सतयुग में मैंने कहा इतना सोना तो माताओं की साड़ियों में जड़ा होगा, सोना और हीरो से जड़ित वस्त्र होंगे तो कल्याण हो जाएगा ना, विनाश भी कल्याण लाएगा, प्रकृति में प्रकोप भी कल्याण करेंगे। मैं एक बात पे और सोचा करता हूं, बीच में मुझे याद आ गई, हालांकि मुझे उसका संपूर्ण ज्ञान नहीं है, किसी ने पढ़ा हो सिद्धांत तो विचार कर लेंगे। ये जो सारा ब्रह्मांड है, मैं ब्रह्मांड किसे कह रहा आप समझ गए, इसमें पोल्यूशन बहुत है ना। लोग कहते हैं अगर एक पावरफुल दूरबीन से इस वायुमंडल को देखा जाए तो लगेगा सांप तैर रहे हैं, लंबे चौड़े कीटाणु तैर रहे हैं। तो ये जो एटॉमिक युद्ध होंगे, गर्मी बहुत पैदा होगी, इससे ये संपूर्ण वायुमंडल भी तो स्वच्छ हो जाएगा या नहीं, बिल्कुल क्लीन हो जाएगा, कोई पोल्यूशन यहां नहीं रहेगा। इसलिए ऐसा लगेगा चांद नजदीक आ गया, वहीं रहेगा लेकिन महसूस ऐसा होगा कि नजदीक आ गया, रोशनी बढ़ गई, अंधेरी रात वैसी नहीं हो रही है। तो हर चीज में एक तरफ निगेटिविटी महाविनाश, दूसरी ओर बहुत ज्यादा कल्याण। भूकंप होंगे, प्राकृतिक प्रकोप होंगे, बहुत लोग धरती में समा जाएंगे, एकदम हाहाकार हो जाएगा, लेकिन धरती के नीचे दबा हुआ सतयुग का सब धन संपदा, सोना हीरे सब ऊपर आ जाएगा भारत भूमि पर, तो बहुत बड़ा कल्याण होगा। ऐसी हर बात को देखेंगे।
भाई जी एक बहुत इंटरेस्टिंग पर्सन है।
एक सेकेंड, एक लाइन और सुन लें। हम हर घटना को, जिसको हम सोचते हैं कल्याणकारी है, हर घटना को वर्तमान की नजर से देखते हैं। हमें अपना दृष्टिकोण बढ़ाकर हर घटना को त्रिकालदर्शी होकर देखना है।
एक बहन किसी भाई को कोर्स करा रही थी, तो उनको बता रही थी कि जीव हत्या नहीं करना, हिंसा नहीं करना है, नॉनवेज नहीं खाना है। तो उसने तर्क दिया कि जो हम साग सब्जी भाजी वगैरह खाते हैं तो उनमें भी तो जीवन है, साइंस ने प्रूव किया हुआ है। तो हम क्या खाए क्या नहीं खाए और उनको कैसे समझाएं?
जीव हत्या उसको माना जाता है जिसमें आत्मा का वास हो। मुर्गी खा रहे हैं आत्मा है, बकरे खा रहे हैं उनमें आत्मा है। ये जो सब्जी आदि हैं, ये विज्ञान ने तो कह दिया लेकिन विज्ञान की हर खोज परफेक्ट नहीं होती। विज्ञान ने कह दिया इनमें भी जीव है, उन्होंने फील किया, पेड़ों में भी फीलिंग्स है, कोई उनको काटने जाए तो उनमें भी डर की फीलिंग होती है, सब्जी आदि में भी चेतना है। ये चेतना प्रकृति की है, आत्मा की नहीं। तीनों जो रचनाएं हैं ये आत्मा, प्रकृति और परमात्मा, रचना न कह के तीनों सत्ताएं, इनकी अलग अलग एनर्जी है। आत्मा की एनर्जी हम सबके पास, परमात्मा की एनर्जी वो सर्वशक्तिवान, लेकिन प्रकृति में भी एक एनर्जी रहती है, वाइब्रेशंस रहते हैं, आत्मा नहीं। इसलिए प्रकृति को जड़ कहा जाता है। अगर प्रकृति में आत्मा होती तो उसे चेतन कहा जाता, लेकिन प्रकृति है ही जड़। इसलिए सब्जी खाना, ये सब चीजें जो हम खा पी रहे हैं, गेहूं दाल चावल चीनी, इनको खाना किसी भी तरह से पाप नहीं है।
भाई जी एक है, गॉल ब्लैडर की पथरी है और टीबी की बीमारी है और पैर में दर्द है, तो इनके लिए क्या योग करें?
गॉल ब्लैडर में पथरी, किडनी की
बीमारी और पैर में दर्द, तो है? क्या योग? पैर में दर्द,
पैर में दर्द,
तो इनके लिए क्या योग करें?
कई तो इतना सुनाते हैं कि लगता है कुछ बचा ही नहीं। चलो इतने तीन में ही जान बच गई। गॉल ब्लैडर में पथरी है, आज तक जो सुना जाता है, देखा गया है, हमारे यहाँ बहुतों को हुई है, बहनों को हुई है, भाइयों को हुई, गॉल ब्लैडर को निकालना ही पड़ता है, क्योंकि वो इतना सूक्ष्म बना होता है, उसका ऑपरेशन करके पथरियों को निकाल दें ये संभव नहीं होता। फिर खान पान की तकलीफ थोड़ी होती है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो कुछ नहीं होगा। किडनी, किडनी को एनर्जी दी जाए, एनर्जी देना आप सब जानते हैं, सीख लो, हाथ मले दोनों, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, अच्छी तरह मलेंगे तब हाथों में एनर्जी आएगी, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, आपके हाथों से एनर्जी निकलने लगी है। याद रखेंगे जो संकल्प मन में होगा उसी तरह की एनर्जी हाथों में आ जाएगी, आ गई है। अब इसको किडनी पे रख दो, यहाँ पीछे होती है, आंखें बंद कर सकते हैं चाहे तो, ताकि हाथों की एनर्जी किडनी को जा रही है, ये फीलिंग हमें भी हो। एक डेढ़ मिनट रख दें अंदाज से, फिर दूसरी बार करेंगे, तीसरी बार, 10 मिनट सवेरे 10 मिनट शाम को। पानी चार्ज करके पिएंगे, वो सब आप जानते हैं, पानी चार्ज करने की विधि, पानी को दृष्टि दे के 7 बार संकल्प करेंगे, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, वो पानी पिए बहुत अच्छा होगा। मुझे ऐसे अनुभव हैं कम से कम 12 लोगों की किडनियां ठीक हुई इससे, क्योंकि सबको तो ये बीमारी होती नहीं, किसी को पथरी के कारण तकलीफ होती है, और भी कुछ गड़बड़ होती है, किसी किडनी वीक हो जाती है, दूसरी किडनी भी लोग लगा देते हैं डॉक्टर, लेकिन कभी कभी वो भी सफल नहीं होती। एनर्जी देना, टांगों के लिए एक्सरसाइज सीख लेनी चाहिए, और वो चीज नहीं खानी है जो वात पैदा करे, वायु, ये बहुत ध्यान देने की जरूरत है। सबको स्वस्थ जीवन जीने के लिए भोजन वही आप खाएं जो आपको ठीक से हजम होता है, तो एक्सरसाइज करेंगे। और अच्छा एक तरीका, 1 घंटा शरीर के लिए योग कर दिया करें रोज, और उसमें 2 स्व मान लेंगे, मैं परम पवित्र आत्मा हूं, प्रकृति की मालिक हूं। दूसरे के लिए भी किया जा सकता है इसी संकल्प से, मैं परम पवित्र आत्मा हूं, प्रकृति की मालिक हूं। प्रकृति शरीर है, तो हमारी पवित्र एनर्जी इस प्रकृति को जाएगी, शरीर को, और कई रोगों में राहत मिलेगी। मैंने कहा दूसरों को भी कर सकते हैं। एक और सिंपल विधि, वो कई रोगों में की जा सकती है और चीजों में भी की जा सकती है। उसको कहते हैं धन्यवाद देना, ग्रेटिट्यूड। वो आप अच्छे तरह ध्यान दें और रोज कोई भी टाइम निकाल के एक बार इसको कर लिया करें। बाबा को धन्यवाद दें, बाबा आपने मुझे तंदुरुस्त तन दिया। ये नहीं कहना बीमार क्यों दिया, तंदुरुस्त तन दिया, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। हे प्रकृति आपने मुझे स्वस्थ शरीर दिया, शरीर को चलाने के लिए हवा पानी अन्न सब कुछ दिया, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। अपने माता पिता का भी शुक्रिया कर लिया करें, आपने मुझे अच्छा तन दिया, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। भोजन जब करें भोजन का भी शुक्रिया किया करें। और एक सुंदर तरीका देखेंगे सभी मुझे, अपने दिल पे हाथ रखो। दिल पता ही होगा किधर है, कईयों को पता नहीं होता। दिल पे हाथ रखा, मेरे अपोजिट साइड, मेरा इधर है आपका इधर होगा। और धन्यवाद दो आंख बंद करके, हे मेरे दिल तुमने मेरे साथ कितने साल से काम किया, धड़कन की खून को प्योरीफाई किया, आप मेरा जीवन हो, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत मदद मिलेगी। ये शुक्रिया जो है ना, आजकल संसार में भी लोगों ने इस पर रिसर्च किया, बहुत ही प्रभावकारी चीज है। क्षमा याचना और शुक्रिया करना बहुत ही मदद करता है बीमारियों को ठीक करने में, जीवन की समस्याओं को समाप्त करने में।
तो टीबी के लिए जो भाई साहब ने एनर्जी देने के लिए बोला, वो लंग्स को एनर्जी दे लेंगे। भाई जी प्रश्न है, ज्ञान में चलने के बाद जाने अनजाने जो पाप कर्म या विकर्म हो जाते हैं, इस बोझ से स्वयं को कैसे मुक्त करें, क्योंकि इन विकर्मों का बोझ ना तो बाबा की महसूसता होने दे रहा है, ना बाबा से योग लगाने दे रहा है, ना बाबा से अपनेपन का अनुभव होने दे रहा है।
एक ही तरीका होता है विकर्म विनाश करने का, सब जानते हैं, पाप का दबाव मनुष्य को खुश भी नहीं रहने देता, योग भी नहीं लगने देता। स्वमान तो उसे ऐसे लगता है, क्या करूं इसका, मैं एक महान आत्मा हूं, समझ में नहीं आता कैसे महान हूं। कई तरह की निगेटिविटी पैदा हो जाती है। और एक पावरफुल संकल्प सुना दूं, अगर आप घबराए नहीं तो, जिसका प्रश्न हो वो अपने को मजबूती से पकड़ ले। बाबा ने कहा, एक ही बार कहा है, बहुत पहले कहा है, 50-45 साल पहले के बीच में, तुम्हें 63 जन्मों का विकर्म नष्ट करने में समय नहीं लगता, लेकिन ब्राह्मण बनने के बाद जो विकर्म होते हैं उसको नष्ट करने में बहुत समय लगता है। आंखों से विकर्म होते हैं, लोग व्यर्थ सुनने का आनंद लेते हैं ना, घंटों व्यर्थ में रहते हैं। बैठ जाती है मीटिंग करते होंगे आप भी कहीं ना कहीं, और सारा व्यर्थ एक दूसरे को सुनते सुनाते हैं। ये सब पाप, किसी के लिए अशुभ भावना रखना, वैर भावना रखना, बहुत पर चिंतन करना, किसी को गिराना चढ़ाना, किसी के बारे में उल्टी सुलटी अफवाहें फैलाना, ये सब संगम युग के पाप हैं। हमारे किसी व्यवहार से दूसरों की स्थिति बिगड़ गई, ये बड़ा पाप होता है। इसलिए जिनको ऐसा हो रहा हो, योग तो नहीं लगता, मैं कुछ छोटी-छोटी चीजें बता देता हूं, लिख लें। पहले तो सवेरे उठते ही और सोने से पहले 108 बार लिखेंगे, मैं मास्टर सर शक्तिवान हूं, उससे थोड़ी स्थिरता आएगी। आपको लिखना है, मैंने कह दिया कि ये को रटने की चीज नहीं है, फिर भी कहीं कहीं इसका रटन भी मन को एकाग्र करने लगता है। मैं इसके लिए एक बहुत अच्छा उदाहरण देता आया हूँ कुछ दिनों से, क्योंकि वो करंट अनुभव है। एक नॉन बी के बहन को कैंसर था पंजाब में, ज्ञान तो था नहीं, डॉक्टरों ने इलाज के लिए कह दिया इसका कोई इलाज नहीं, घर आ गई। उसकी बहन या कोई रिलेटिव ज्ञान में है, उससे पूछा उसने कि कुछ हो सकता है भाई, आपके यहाँ मेडिटेशन होता है, ध्यान होता है, कुछ कर सकते हैं? उसने उसको बता दिया एक मंत्र है, भगवान का दिया हुआ मंत्र, अगर तुम बहुत भावना से इसको रटोगी, जाप करोगी, तो तुम ठीक हो जाओगी। भगवान का दिया हुआ मंत्र है, विश्वास बैठ गया। मंत्र था, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं। माला ले ली उसने, वो सारा दिन ही करती रही, क्योंकि मृत्यु सामने खड़ी थी, मरता क्या मैं ही करता, कहावत सुनी होगी। सोचा कि चलो रात दिन यही कर लेती हूं, क्योंकि जब किसी को संबंधों में पता लगता है ये व्यक्ति 3 मास ही जिएगा, तो आप समझ सकते हो क्या क्या होता है। वाइब्रेशंस भी भारी हो जाते हैं, बच्चे, पति और जो समीप वाले, उनका मन भी भारी होगा, अपने में भी कई निगेटिविटी आएगी, और वो धीरे धीरे इम्प्रूव होने लगी। और 3 मास करके, 3 मास उसने किया, उसका कैंसर गायब हो गया। मेरे लिए भी बहुत राहत की बात थी, और ये क्लियर होता था जो मैं बहुत सुनाता हूं क्लासेज में, ये कहीं लिखा हुआ नहीं है, ये मुझे ख्यालों में आई। हमारे हर संकल्प से एनर्जी पैदा होती है, तो मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, वो लगातार जप रही है, तो उससे एनर्जी पैदा होकर उसके ब्रेन को जा रही है, शरीर में फैल रही है, और वो कैंसर को नष्ट करने लगी। तो जिसका ऑपरेशन था वो पहले 108 बार सवेरे, 108 बार शाम को, दूसरा बाबा से और उनके द्वारा, उनको जिनके द्वारा, जिनके लिए कोई विकर्म हुआ है, क्षमा याचना भी करें। बाबा से भी क्षमा याचना 21 दिन कर दें, और पहले दिन बाबा को पत्र लिखकर क्षमा याचना करें, बाबा कमरे में रख दें। बाबा बहुत आज शब्द बोले ना बाबा ने, हे दयालु कृपालु बाबा, देखो भक्ति के शब्द हैं, साकार में बाबा कहते ये नहीं, ये भक्ति है, पर अब खुद सिखा रहा है, ऐसे बातें करो मेरे से, हल्कापन हो जाएगा। तीसरी बात, थोड़ा समय सेवाओं में लगाओ, सेंटर में, सेवा का पुण्य भी पाप के बोझ को हल्का करता है, बहुत जरूरी है। 2 घंटे रोज सेंटर में सेवा करो, बर्तन मांज दो, सफाई कर दो, बहनों कपड़े धो दो, प्रेस कर दो, स्थूल काम कुछ भी, बगीचा हो तो बगीचे की संभाल कर लो, पानी दे दो, घास निकाल दो, ये पुण्य बहुत मदद करेगा। फिर धीरे धीरे 5 स्वरूपों का अभ्यास, 1 मास ये सब करके 5 स्वरूपों का अभ्यास शुरू करो, और अपने को भी क्षमा कर दो। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, अपने को भी क्षमा कर दो, अज्ञानवश, मायावश मेरे से गलतियां हुई, मैं अपने को भी सच्चे दिल से क्षमा करता हूं, करती हूं। हल्के हो जाओ, धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होगी। 500 रुपए के अभ्यास से फिर स्वमान का अभ्यास बढ़ेगा और योग लगने लगेगा।
भाई जी, इससे जुड़ा एक प्रश्न और था कि जब 5 स्वरूप का अभ्यास करते हैं तो विजुअलाइज नहीं होता है, तो कैसे विजुअलाइज करें?
विजुअलाइज का अर्थ होता है वो स्वरूप दिखना, वो उनको नहीं दिखता जिन्होंने बुद्धि में बहुत कुछ गंदगी भर ली है, क्योंकि बुद्धि ही तीसरा नेत्र है। इस नेत्र से ही हम विजुअलाइज करते हैं, अर्थात देखते हैं। तो बुद्धि को साफ करेंगे, व्यर्थ भरने का संकल्प जो उसको हटा दो, मैंने शायद पहले दिन बताया था, हमारी बुद्धि सोने का बर्तन है, इसमें हमें गंदगी नहीं भरनी है। ये ईश्वरीय ज्ञान के लिए है, ये उसके वरदानों के लिए है, ये उसको बैठाने के लिए है। तो बुद्धि को साफ करेंगे, विजुअलाइजेशन होता रहेगा, लेकिन एक प्रैक्टिस भी करें, मैं आत्मा हूं, अपने स्वरूप को अपने सामने देखा करें, समझो 3 फुट पर चमकती आत्मा का मन से चित्र बनाओ, बिंदु उसे तेजस्वी किरणें फैल रही हैं, 3-4 फुट पर 1 सेकंड देखो, फिर 3 सेकंड देखने की प्रैक्टिस करो, फिर 10 सेकंड, फिर 20 सेकंड, रोज 2-4 बार कर लो, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी तो विजन क्लियर होने लगेगी। ऐसे ही परमात्मा का विजन सामने है, बाबा ज्ञान सूर्य, ऐसे ही देव स्वरूप का विजन, वो सामने मेरे देव स्वरूप खड़ा है, चित्र बनाओ, मन में चित्र बनाओ। धीरे धीरे प्रैक्टिस करते, अगर 3 मास ही अच्छी प्रैक्टिस की जाए और बुद्धि पर ध्यान दिया जाए कि हमें गंदगी पर चिंतन नहीं भरना है, तो सब ठीक हो जाएगा।
भाई जी, एक प्रश्न है कि जब हम अपने वर्क क्षेत्र पर रहते हैं, अपने कार्य को बहुत अच्छी तरह से करते हैं, तो हमारे को ओवर वर्क लोड दे दिया जाता है, और यदि हम कार्य को अच्छी तरह से करेंगे तो हम टायर्ड हो जाएंगे, नहीं करेंगे तो साथी हमसे संतुष्ट नहीं होंगे, तो हम इसको कैसे मैनेज करें और क्या करें?
बैलेंस तो रखना ही पड़ेगा, ये भी सच है। ऑफिसों में आप बहुत अच्छा काम करते हैं, आप भोले भाले हैं, आप ना नहीं करते तो आपको काम ज्यादा दिया ही जाएगा, लेकिन थोड़ा बताने का भी साहस रखें कि बस नहीं भाई, टाइम हो गया मेरा, अब घर जाना है, घर में बच्चे इंतजार करते हैं, हमें घर में भी कुछ काम है, इतनी मेरी ड्यूटी है। थोड़ा बोलने का भी साहस बटोरें, नहीं तो भोले लोगों का मिसयूज तो संसार में होता ही है। स्वमान बढ़ा दें, 4-5 स्वमान अपने लिए चुन लें, उनका बहुत अभ्यास करें और अपने कार्यों को टाइम पर परफेक्टली और ईमानदारी से पूर्ण करते रहें। ज्यादा काम दिया जाए कि भाई कल, थोड़ा बोलने का रखें।
भाई जी, एक प्रश्न है कि जब हम योग में 1-2 घंटा एक जगह बैठते हैं तो क्या वो हठ योग नहीं है?
आप जो चाहे कह दो, अब मेरे से तो बैठा नहीं जाता भाई बहुत ज्यादा, अपनी अपनी हेल्थ की बात है। मेरे को तो योग में आनंद आता है, चलते फिरते परम आनंद, जो दीदी रोज बुलवाती है ना, परमानेंट आनंद तो मुझे तो बहुत आनंद आता है। किसी के शरीर में ताकत है 2 घंटे भी लगातार न बैठ के, 2 बार में बैठो 1-1 घंटा, हठ योग भी कहते हैं, लेकिन किसी किसी को अगर रस बहुत आता हो बैठ के योग करने में तो करना ही चाहिए, उसको हठ योग नहीं कहा जाएगा। लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि चलते फिरते कर्म करते भी योग अभ्यास हो और हमारा जीवन योग युक्त बनता जाए। योग अभ्यास और योग युक्त जीवन, दोनों के अंतर को आप थोड़ा समझ लेंगे, जुड़े हुए एक दूसरे से, पर ध्यान देना है कि एक योगी के जो लक्षण होते हैं वो जीवन में आते रहें, दिखाई देते रहें।
जैसे इस एक प्रश्न है भाई जी, किसी की हमारे प्रति अपनेपन की या प्यार की फीलिंग्स रहती है, वाइब्रेशंस तो हम तक पहुंचते हैं, तो उनके प्रभाव से हम अपने आप को कैसे मुक्त रखें? कि नेचुरली है, किसी को भी कोई अच्छा लगेगा, ये नेचुरल है, तो उससे हम अपने आप को कैसे बचाएं?
देखिए, प्यार और अपनापन होना ये बहुत अच्छी बात भी है, लेकिन यही प्यार अगर लगाव में बदलता है तो बंधन बन जाता है। लेकिन प्यार और अपनापन जो 2 शब्द लिखे हैं, ये तो बहुत पवित्र शब्द हैं, इसमें कोई नुकसान नहीं है। हमारे संगठन प्यार और अपनेपन से ही तो चलते हैं, लेकिन अगर आपको लगने लगे वो बंधन है, तो सवेरे उठकर 21 दिन मैं शिव शक्ति हूं, इस आत्मा के बंधन से मुक्त हूं, 7 बार कर लो, थोड़ा सा आत्मिक दृष्टि को बढ़ाएंगे तो बंधन समाप्त हो जाएगा।
भाई जी, किसी ने पैसा दिया हुआ है और रिटर्न नहीं कर रहा है, तो उसके लिए क्या अभ्यास करें? क्योंकि फोन भी नहीं उठाता है, तो फिर क्या किया जाए ताकि हमारा पैसा रिटर्न आ जाए?
मैं आप सबके माध्यम से सबको कहना चाहूंगा, कलयुग की ये रीति और नीति है, लेके न देना। ये बात अपने लोगों में ज्यादा होती है। एक बहन ने अपने भाई को 50 लाख दे दिए, पति को भी नहीं बताया। उन्होंने कहा मैं जल्दी लौटा देता हूं। दोनों ही घर साहूकार थे, ज्ञान में वो बहन। अभी उसने भी यही कर दिया, न फोन उठाए न बात करे। अब देखो, पैसे ने शत्रुता बढ़ा दी। इसलिए मैं आप सबको कहूंगा, ये जो पैसे का लेन देन है ये बाबा से कर लो। कितना देगा? ये जो पैसे बढ़ाने के चक्कर में हम पैसे को फंसा देते हैं, उससे बुद्धिमान आत्माओं को बचना चाहिए। कहीं कहीं किसी की मदद करनी पड़ती है, कोई मुसीबत में है, अगर वो दे देता है तो बहुत अच्छी बात है। संसार में अच्छे लोग भी हैं, सभी बुरे नहीं हैं। लेकिन अगर वो नहीं देता और बात भी बंद कर दिए, तो सोच लो पिछले जन्म का लिया था, दे दिया, खत्म। ओम शांति। आपको और मिलेगा, बहुत अच्छा, क्योंकि जो लेने वाले हैं उनको कुछ नहीं मिलता, और जो देने वाले हैं, दातापन की भावना रखते हैं, उनको सब कुछ मिलता है।
भाई जी, एक प्रश्न जो आपने 7 तारीख क्लास में बताए थे कि हर जन्म का चित्र बनाने से वैसा शरीर प्राप्त कर सकते हैं, तो इसको कैसे करना है, उसको स्पष्ट करने के लिए।
ठीक है, ध्यान से सुन लेंगे। बहुत गहरी फिलोसफी है ये, मन की शक्तियों की। अपनी बुद्धि में या कागज पर लिखना, मैं अपने हर जन्म को कैसा देखना चाहती हूं, देखना चाहता हूं। हर जन्म मेरा ऐसा हो, लिख लेना कुछ बातें। 10 बातें भी लिखी जा सकती हैं, 16 भी लिखी जा सकती हैं। जैसे हर जन्म में सिर पर ताज हो, हर जन्म में धन धान से हम भरपूर रहें, हर जन्म में संबंधों में प्यार हो, हर जन्म में हम दाता बंद कर रहे हैं, हर जन्म हमारा धर्म के प्रति प्यार में बीते, हर जन्म में हम अपने देश के काम आ जाएं, ऐसे जो जो आपको लगता हो। जीवन की महानता है, हर जन्म में हमारा श्रेष्ठ भाग्य हो, हर जन्म में हमारे घर ऐसे हों, हमारे संबंध ऐसे हों। और फिर सवेरे उठकर ये काम पहले 5 मिनट में ही करना है, और संकल्प करेंगे मेरा हर जन्म ऐसा होगा, जिसका विजन बन सके बनाना, नहीं तो पावरफुल संकल्प करना, मेरा हर जन्म ऐसा होगा। होना चाहिए नहीं, होगा। 21 दिन लगातार करें, आनंद लें उसको, ऐसा ही होगा, तो वही फिक्स हो जाएगा। बहुत बड़ी फिलोसफी है ये, अंतर्मन की शक्तियों की, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड।
भाई जी, यदि कोई संबंधी है, घर वाले है, हम वो ज्ञान में चलाना चाहते हैं, ज्ञान में नहीं चलते हैं, तो हम या तो ड्रामा की भावी कहकर छोड़ दे, या तो उनको चलाने के लिए क्या हम पुरुषार्थ करें?
अब ये ज्ञान और धारणाएं ऐसी हैं कि डंडे मार के तो नहीं चलाया जा सकता किसी को। आप जानते हैं भगवान से मिलन है इधर, बहुत पुण्य आत्माएं चाहिए। बाबा की मुरलियों से स्पष्ट है, जिन्होंने सच्चे दिल से बहुत भक्ति की है वही तो भगवान को पाते हैं। अब अंत में आप सबने प्राप्त कर लिया है, इसलिए ज्यादा ज्ञान नहीं सुनाओ अपने घरों में। ज्ञान सुन सुन के तो बोर हो जाएंगे और आपको भी रोकने लगेंगे। अपने जीवन को इतना सुंदर बनाओ, आपको देखकर वो बाबा के पास खींचे चले आए। संसार में टेंशन है, आपका चेहरा दिखाई दे के देखो, काम तो इन्हें भी है पर ये कितने खुश हैं। परिवार तो सबको है, आपको भी है, लेकिन देखो इनके परिवार में कितना प्यार है, खुशी है, शांति है, ये प्रैक्टिकल दिखाएंगे तो सब लोग बाबा की ओर खींचेंगे। ज्यादा सुनाना नहीं चाहिए, नहीं तो क्या कहेंगे लोग गुस्से में, सारा दिन उपदेश करती रहती है। बच्चे भी कहेंगे, बच्चे भी आपसे चिढ़ने लगेंगे, मम्मी सारा दिन उपदेश करती है। तो ज्ञान कम सुनाएंगे, प्रैक्टिकल ज्यादा दिखाएंगे।
भाई जी, इनका प्रश्न है कि आंख खोल के योग करना चाहिए कि आंख बंद करके?
ये तो इन्हीं से पूछ लो कैसे करना चाहिए भाई, क्योंकि आंखों से वाइब्रेशंस फैलते हैं जो प्रकृति का और संसार का कल्याण करते हैं। बाकी अगर आपका योग नहीं लग रहा, आप अकेले हैं, घर में योग करना है आपको और आपको नींद नहीं आएगी, तो बंद करके भी थोड़ी बहुत देर कर सकते हैं, पर खोल के करने से ही तो अच्छा होगा। बाबा क्या करते थे, तुम दुकान पे बैठे हो, ग्राहक आ रहे और तुम आंख बंद करके बैठे तो माल उठा के ले जाएंगे। और क्योंकि हमें कर्म योग करना है, इसलिए खोल के रखने की ही प्रैक्टिस करनी चाहिए।
तो भाई जी, इससे जुड़ा एक प्रश्न था कि योग में नींद आती है तो उसे कैसे समाप्त करें?
बहुतों को आती है, सुख मिल जाता है थोड़ा सा, मुरली सुनते भी सुख मिलने लगता है, सबसे अच्छी नींद आती है मुरली में। इसलिए पॉइंट अधिक से अधिक लिखा करें। और एक प्राणायाम है अनुलोम विलोम, आप सब उससे परिचित हैं, उससे ब्रेन को ऑक्सीजन जाती है। खाने पीने पे थोड़ा सा ध्यान दे दें, कुछ दिन हल्का कर लें और पुण्य कर्म बढ़ाएं, क्योंकि योग में मुरली में मैं बिल्कुल साफ साफ बता देता हूं, छुपाने की बात नहीं, अगर किसी को नींद आए, कोई और बात हो गई, वे रात को सोए नहीं थे इसलिए नींद आ गई, कुछ और शारीरिक कारण है, वो अलग चीज है, पर आदत ही ऐसी हो, ओम शांति शुरू हुई और गर्दन नीचे झुकने लगी। कईयों को हम देखते हैं, एक मिनट का गीत भी होता है ना ट्रैफिक कंट्रोल, उसमें भी विश्राम कर लेते हैं। तो ऐसे में पुण्य का खाता बढ़ाएंगे, पाप का दबाव ब्रेन पर, मनुष्य को योग और ज्ञान का सुख नहीं लेने देता।
भाई जी, एक प्रश्न है, उनके रिश्तेदार पे किसी ने तंत्र मंत्र किया है, उससे बहुत परेशान है, उनके बच्चे भी कहीं गर्भ में मर जाते हैं, तो इसके लिए वो क्या करे ताकि उस तंत्र मंत्र के प्रभाव से मुक्त हो जाए?
देखो, है तो ये तांत्रिक चीजें और कोई तांत्रिक से ही सलाह लेनी पड़ेगी, लेकिन मास्टर सर्व शक्तिवान का बहुत अभ्यास, सारा दिन बाबा का अपने घर में आह्वान मैं कराया करता हूं, आपने सुना ही होगा, बाप दादा हमारे घर में आ गए, उनके अंग अंग से पावरफुल एनर्जी फैलने लगी, और थोड़ी देर के लिए अभ्यास करें, पूरा घर उस एनर्जी से भर गया, डरें बिल्कुल नहीं, ये लोग ये काम अपने ही लोग कराते हैं ईर्ष्यावश। एक पंडित ने मुझे बताया, तुम भाई क्लास में सुना दिया करो, बहुत अच्छी बात है, जब भी नवरात्रि आती है तो गाय के घी का घी दीपक अखंड जला दो 9 दिन, उससे भी ये खत्म हो जाता है। अपने घर में पानी चार्ज करके भी रोज छिड़कने लगो, सबको करना चाहिए आजकल पानी चार्ज करके छिड़कना, और जिन जो इनको गंगा जल मिल सकता है वो गंगा जल थोड़ा लेके चार्ज करें उसको, और पूरे घर में छिड़क दें तो बैड एनर्जी नष्ट हो जाती है। बाकी है महापाप, जो भी इसको करता है उनकी दुर्गति होती है, गीता में भी कहा है, जो मेरे को पूजते हो मेरे पास आ जाते हैं, देवताओं को पूजने वाले देवताओं से मिलते हैं और भूतों को पूजने वाले भूतों से मिल जाते हैं। तो ऐसे लोग जब देह छोड़ते हैं तो जो आत्माएं भटक रही वही उनको अपने कंट्रोल में लेके चली जाती हैं, उनका पुनर्जन्म नहीं होता और वो आत्माएं बहुत कष्ट पाती हैं। इसलिए तंत्र मंत्र, जो बहुत अच्छी विद्या थी भारत की, इसको जो मिसयूज किया जाने लगा दूसरों को कष्ट देने में, इसको सभी महापाप समझकर इससे मुक्त रहें।
भाई जी, एक प्रश्न है, किसी के जटिल संस्कार को कैसे परिवर्तन करें, उसे नशे जो आदत है नशे की उसको कैसे छुड़ाएं?
मैं आपको एक विधि बता रहा हूं जो क्रोधी व्यक्ति के क्रोध को समाप्त करने में करें, कोई गलत राह पर बच्चा चला गया है उसको ठीक करने में करें, जो व्यसनों के अधीन हो गए उनको व्यसन मुक्त करने में भी करें। बहुत ध्यान से सुनेंगे, ये भी मन की शक्तियों का प्रयोग है। जब वो व्यक्ति सोया हो, नशे वाले व्यक्ति तो सवेरे सोए ही होंगे, रात को तूफान करेंगे सवेरे सोएंगे, जब वो सोया हो 5 मिनट उनको वाइब्रेशंस देने हैं। विधि, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, बाबा की शक्तियां मेरे पास हैं, इस गुड फीलिंग में आकर मेरे मस्तक से शक्तियों की किरणें निकलकर उस आत्मा को जा रही हैं। 5 मिनट, कम से कम 3 मिनट बाबा की शक्तियां ऊपर से आ रही हैं, मस्तक से उसे जा रही हैं। अब उसे आत्मा देखते हुए मन से उससे बात करो, इंग्लिश में कहेंगे माइंड टू माइंड, मन से उससे बात करो, तुम बहुत अच्छी आत्मा हो, तुम बहुत बुद्धिमान हो, समझदार हो, ये चीज मान लो शराब और कोई व्यसन, ये असुरों का भोजन है, तुम तो देव कुल की पवित्र आत्मा हो, ये तुम्हारा भोजन नहीं है, ये गंदगी है, इसे छोड़ दो। लास्ट में कमांड, इसे छोड़ दो। अगर आप रोज सेम टाइम समझते हैं ना, इंग्लिश का शब्द है, रोज उसी समय पर ये 5-6 मिनट का प्रयोग करेंगे तो उसके विचार बदलने लगेंगे। क्रोध वाले को वैसे कर लो, तुम बहुत अच्छे हो, तुम तो भगवान के बच्चे हो, तुम आत्मा तो शांत हो, क्रोध बहुत बुरी अग्नि है, इससे तुम्हारे परिवारों में अशांति फैल रही है, इसको छोड़ दो, शांत हो जाओ। रोज सेम टाइम उसको ये वाइब्रेशन देंगे तो उसके विचारों में बदलाव आएगा और बिगड़ा हुआ व्यक्ति ठीक राह पर आ जाएगा। क्लियर है? क्लियर है ना? ये पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड का यूज है, मन की शक्तियों का प्रयोग है, ये अंतर मन की शक्ति का, क्योंकि जब दूसरा व्यक्ति सोया है तो उसका अंतर मन बहुत एक्टिव है। शराब तो उसने बाहर से पी है ना, अंतर मन तो उसका शुद्ध है, कहीं ना कहीं उसको भी रोज ख्याल आता होगा ये गलत है, पर वो आदत वश उसको लेता रहता है, ये प्रयोग करेंगे।
भाई जी लास्ट प्रश्न है, कोई आत्मा बहुत जल्दी इमोशनल हो जाती है और उसके कई बार बैड इफेक्ट भी होते हैं, उल्टे रिजल्ट भी निकलते हैं, रोने भी लगती है वो आत्मा, तो उस ओवर इमोशनल की फीलिंग्स को कम कैसे करें?
इमोशनल का अर्थ है बहुत भावुक हो जाना, या ऐसा कहें किसी को बहुत फीलिंग आती है, सेंसिटिव कहते हैं उसको, आज भी था छुई मुई, तो ना तो हमें बहुत जल्दी फीलिंग में आना है, मैं ऐसी बहनों का नाम रख देता हूं फीलिंग देवी, हमें थोड़ा पावरफुल बनना है, छोटी बातों में फील करके मोड ऑफ कर लेना, वातावरण को भारी कर देना, अपनी खुशी को नष्ट कर देना, बचेंगे इससे। मैं आपको बाबा का एक महावाक्य सुना दूं, अव्यक्त बाबा आए थे और किसी ग्रुप को बाबा से मिलाया गया, उनमें थोड़ा टकराव था, दोनों ग्रुप स्टेज पे आए, हालांकि तब स्टेज पे लोग बाबा से मिलने नहीं आते थे, आपको पता जब से शांतिवन बना, तो तब बाबा ने कहा था फीलिंग आना माना आधी मृत्यु, बहुत भारी शब्द दिया, इसलिए एक तो संकल्प कर लें मैं क्यों फीलिंग में रहूं, मुझे नहीं रखना, कहने वाले कहते रहे, मुझे मस्त रहना है, और कुछ दिन सवेरे उठकर और सोने से पहले 108 बार लिख लें मैं मास्टर सर्व शक्तिवान हूं, और दिन में भी याद किया करें मैं शिव शक्ति हूं, शिव की शक्तियां मेरे पास हैं, मैं कमजोर नहीं हूं, मैं बहुत खुश हूं, मैं पावरफुल हूं, मुझे फीलिंग नहीं आ सकती, फीलिंग मेरा सब्जेक्ट ही नहीं। तो धीरे धीरे ध्यान देंगे और ये अभ्यास करेंगे, ज्ञान का भी प्रयोग करेंगे। मान लो आपने कोई गलती कर दी और आपके बड़े ने आपको कुछ कह दिया, ठीक है, डांट के कह दिया, ऐसे कह दिया तुम रोज यही करते हो, तुम सुधरोगे ही नहीं, और दो चार महावाक्य सुना दिए, फीलिंग तो आ सकती है, लेकिन सोचना है कि मैंने गलती की है। तो ठीक है, बड़ों का काम है कुछ कहना, डांट भी दिया तो क्या है, बड़े हैं ना हमारे। हमने देखा कई बहनों में ये संस्कार रहता है, कहते हैं अरे हमारे बड़े हैं ना, प्यार भी तो करते हैं, डांट दिया तो क्या हुआ, हम अपनी गलती को सुधारेंगे, कह देते हैं भाई हम अपनी ये गलती हमसे हुई है, हम इसको ठीक कर लेंगे। तो ज्ञान से भी अपने को हल्का करेंगे और अपनी शक्तियों को बढ़ाएंगे तो सब चीजें ठीक हो जाएंगी। भावुकता विशेष रूप से जब किसी की मृत्यु होती है, यह सबको अनुभव है, जब आपकी लड़की की शादी हुई होगी और वो विदाई ले रही होगी, क्या होता है आप ही बता दो, मैं तो किसी शादी में गया नहीं आज तक, हमारे लौकिक घरों में भी हुई, मैं नहीं गया कभी। मैं सुना है कि जब विदाई होती है तो माँ बाप और कुछ नजदीकी लोग इतने भावुक हो जाते हैं कि संभाल ही नहीं पाते अपने आंसू। ठीक है, वो प्यार होता है, वो कोई, मैं ये नहीं कहूंगा बहुत बुरी चीज है, बुरी नहीं है, वो एक प्यार की बात है। जो लड़की आपके घर में रही 20, 22, 25 साल, वो जब जाएगी तो फील तो होता है। लेकिन मैं शिव शक्ति हूं, मैं मास्टर सर्व शक्तिवान हूं, इस संकल्प को बहुत बढ़ाएंगे तो छोटी मोटी बातों में भावुकता खत्म हो जाएगी। कई बहनें मेरे पास आती हैं, भाई जी मैं तो फट से रो लेती हूं, मैं तो कहा करता हूं रो लिया करो, पानी ज्यादा पी लिया करो थोड़ा, ताकि जो निकले वो कवर होता रहे। ये थोड़ी ज्यादा जो भावुकता है वो कमजोरी बन जाती है हमारी। भावुकता एक बहुत बड़ा गुण है, जिस व्यक्ति में भावुकता ना हो तो पत्थर दिल हो गया, उसको तो कोई भी पसंद नहीं करेगा। लेकिन ऐसा नहीं कि कोई मुर्दा जाते देख लिया रोने लगे, कौन मरा ये पता नहीं। कुछ बहनें ऐसी मिलती हैं, भाई जी मुर्दों से बहुत डर लगता है, कहा एक दिन मैंने देख लिया जाता हुआ, तब से मुझे बहुत डर लगने लगा। मैंने कहा मुर्दा थोड़ा ही खड़ा होके तुम्हें पकड़ेगा, कहा ये तो मुझे पता है पर डर बहुत लगता है। एक जगह हम गए, पता नहीं कौन सा स्टेट था, इधर ही छत्तीसगढ़ या कहाँ, वहां जब डेड बॉडी जाती है तो आगे बाजे बजते ही जाते हैं, आगे या पीछे। मैंने पूछा कोई बहुत बुजुर्ग है क्या, कि नहीं यहाँ का रसम है, इस एरिया का, पूरे स्टेट का नहीं, किसी की मृत्यु होगी ये ढोल बजते हुए ही उसको ले जाते हैं। मैंने कहा किसी ने अच्छी रसम डाली होगी कि बेचारी आत्मा मुक्त हो गई, खुशियां मनाओ। भारत के अलग अलग एरियाज में अलग अलग रसम भी हैं। तो आप सभी अभी जीवन की इस यात्रा का बहुत आनंद लेना, लेंगे या नहीं। मैंने आपको एक बात कही है, जीवन के कोई 5 बहुत ही स्ट्रांग नियम बना दो, यही बना लेना, ये करेंगे ये नहीं करेंगे। ऐसे ना बनाना जो 5-7 दिन ही चले बस। नियम बना दो रोज सवेरे 3 बजे उठेंगे और 3 दिन ही उठो केवल, ऐसा नहीं। जो प्रैक्टिकल किया जा सकता है वही नियम बनाना। वो कमजोरियां जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही हों उनको दूर करने का नियम बना लेना। नियम कोई सदा के लिए नहीं होते, 3 मास आप उन नियमों पे चलेंगे तो कुछ चीजें आपके संस्कार बन जाएंगे। तो बहुत अच्छा किया, सभी को बहुत आनंद आ गया ना। श्याम को तो राखी है आप सबकी, राखी पे भी संकल्प करेंगे। हमें बहुत अच्छा लगता है आप सब ज्ञान सरोवर की शोभा बढ़ाते हैं, चारों ओर पवित्र फरिश्ते घूमते फिरते नजर आते हैं। हालांकि मैं तो शांतिवन भी रहा, कल चला गया था, ज्यादा पता नहीं चल पाया, लेकिन आप सबके वाइब्रेशंस यहाँ के वाइब्रेशंस को और आकर्षक बनाते हैं, इसलिए आते रहना। और ये कमी तो रहेगी क्योंकि कलयुग का अंत है, इनको निकालने का प्लान बनाना, केवल संकल्प से काम नहीं चलता, प्लानिंग क्या करें हम अपने संस्कारों को बदलने के लिए भी, क्या क्या करें, योग बल भी, 500 रुपयों का अभ्यास भी और दृढ़ संकल्प भी, तो आपकी संगम की यात्रा सुहानी सुखों से भरी हुई हो जाएगी। ओम शांति।
ओम शांति। तो भाई साहब ने इतने समय में सभी के जो यूजफुल प्रश्न थे उनको अच्छी तरह से विस्तृत उनको